बस दफ़ा हमारे पास दुनिया की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला देते हैं, हम बदलते भी रहते हैं, पिछली चीज़ों को ज़ाया ना करें। लेकिन एक सिर्फ छोटी सी अमल की बात है, कभी भी कोई नेकी की कोई नई राह खुल जाए ना, तो पिछली को ज़ाया ना करें, किसी को दे दें। आपको अल्लाह ने एक अच्छी जगह दी, अच्छा मेरे पिछला उठा के किसी मस्जिद में दे दें। हमारे यहाँ आजकल मसला क्या है कि चूंकि दौलत बड़ी है, माल बहुत है, तो हम पकड़ के फ़ौरन ट्रैश करते हैं, फेंको इसको। नहीं, इस पर मैं अक्सर एक बात सुनाया करती हूँ, अब्दुल्ला बहावलपुरी की मैंने कैसेट में सुनी थी, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भरे, दुनिया में आज नहीं है। बड़े सादा मिंच लोग थे, मतलब प्रोफेसर थे, लेकिन बहुत सादा मिजाज थे। कहते मैंने अपने बच्चे को कोई चीज़ लेने भेजा, बच्चा आ गया लेके। मैंने कहा बाकी क्या मिला है, चेंज आया कुछ? उसने कहा पा वो अठन्नी मिली थी। मैंने दुकानदार से कहा छोड़ो मैं नहीं लेता, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना चेन कीप कीप इट, तो मैंने नहीं लिया। कहते मैंने अपने बच्चे को डांटा, मैंने कहा तूने क्यों नहीं लिया, तो उससे लेता, रास्ते में एक मस्जिद आ रही थी उसके चंदे में डाल देता। उस दौर में 50 सेंट से कोई एक ईंट आ जाती होगी। कहा तेरे इस 50 सेंट से मस्जिद की एक ईंट आ सकती थी, तूने क्यों अपनी नेकी ज़ाया की? हमारा हाल क्या है, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं। तो लिहाजा इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को बनवाया। अब ये मस्जिद क्या मस्जिद थी? नहीं, ये आज की ज़ुबान में एक यूनिवर्सिटी थी, तालीम तदरीस। वहाँ वो नफ़रतों के माहौल ख़त्म हुए, वो लड़ाइयाँ जो पहले थी, वहाँ लोगों को एक मरकज़ मिल गया। पूरी मुहिम साजी इधर से होती थी, किसको जिहाद पे भेजना है, किसको कहाँ भेजना है। ये मस्जिद एक पार्लियामेंट का दर्जा भी रखती थी, और इसी तरह की जो बातें यानी उस मस्जिद में होती थी, इसी के साथ फ़कीर मुहाजरीन जो थे उनके लिए थोड़ी सी जगह बन गई। फिर इसी तरह हिजरत के शुरू ही में अज़ान भी हुई, अज़ान दिन में 5 बार जो हुई, ये भी अल्लाह ताला ने एक अजीब व गरीब वाक़या था। अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्द, इन्होंने ख्वाब देखा था, और ख्वाब में इनको किसी ने अज़ान के कलिमात सुनाए, तो इन्होंने फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके जब सुनाया, तो आपने कहा कि अब यही हमारी अज़ान होगी। इसी तरह आपने अज़ान जो थी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को सिखाई, मस्जिद नबी के पहले मौज़िन जो थे ये हज़रत बिलाल बने, फिर इब्ने मकतूम बने। हज़रत बिलाल सहरी के लिए अज़ान दिया करते थे, जिसको आज के दौर में हम कहते हैं ना ये तहज्जुद की अज़ान है, और इसी तरह इब्ने मकतूम जो थे वो फजर के लिए अज़ान देते थे। फिर इसी तरह अबू महजूरा का जिक्र पीछे गुजरा, पहले दूसरी जगह, तो इस तरह से वहाँ फिर अज़ान शुरू हो गई और मुसलमानों को एक सेंटर मिल गया। इसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया वो क्या था, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। इब्ने कय्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह ने हज़रत अनस बिन मालिक के मकान में मुहाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम कराया। कुल 90 आदमी थे, 90, आधे मुहाजरीन और आधे अंसार। भाईचारे की बुनियाद ये थी कि ये एक दूसरे के गम ख्वार होंगे, और मौत के बाद नस्बी कराबतदारों की बजाय यही एक दूसरे के वारिस होंगे, और विरासत का ये हुक्म जंगे बदर तक कायम रहा। और फिर यह आयत नाजिल हुई कि वह उलुल अरहाम इबादुहुम औला बिबादिन, यानी शुरू में भाईचारा कायम हुआ तो विरासत भी एक दूसरे को मिलती थी, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुसलमान जाहली असबियतों को ख़त्म करके इस्लाम के नाम पर रंग और नस्ल के बुतों से अपने आप को पाक करते हुए तकवा की बुनियाद पे जुड़ने लगे। अब देखिए, पहला दर्स जो उम्मत को दिया गया वो भाईचारे का दिया, ब्रदरहुड, गोरे काले का फ़र्क ख़त्म किया, अरबी अजमी का फ़र्क ख़त्म किया, मुहाजर और अंसार का फ़र्क ख़त्म किया। ये नहीं कि मुहाजर हर वक्त गिल्ट में रहें कि क्या हो गया, ताने मिलते रहें, और अंसार किसी बड़ाई का शिकार हो, ऐसा नहीं करते। और आपको पता है कि जो भाईचारा हुआ था वो भी एक दिलचस्प बात है। अल्लाह के नबी आए, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन रुबी का भाईचारा आपने किया। साद ने अब्दुर्रहमान से कहा कि देखो मैं माल वाला हूँ, बहुत माल है और 2 बीवियाँ हैं, आधा माल देता हूँ और मेरी बीवियों में से आप देख लें, जो आप चाहें मैं उसको तलाक दूँ, इद्दत पूरी हो जाएगी तो आप उससे शादी करें। अब्दुर्रहमान ने कहा नहीं, आपको अल्लाह ताला बरकत दे आपके अहल और माल में, दल्लूनी इला सूक, मुझे बाजार का रास्ता बताएं। देखिए कि देने वालों के दिल बड़े थे, तो जो आए थे वो भी कोई भूखे मंगते नहीं थे, वो लेने नहीं आए थे, वो देने वाले थे। बाजार गए, वहाँ जाके कुछ सौदा किया, लिया दिया, इधर से कहते हैं घी और पनीर का काम करते थे, और चंद दिन में अल्लाह ताला ने उनको दोबारा वो सब दे दिया जो अल्लाह के रास्ते में दे के आए थे। फिर इन्होंने शादी भी की। आपने कहा कि शादी की है, क्या तुमने हक महर दिया? कहा कि हाँ, एक गुठली सोने के वजन के बराबर, यानी कोई एक तोला सोना के करीब वजन दिया। फिर इसी तरह आप देखिए कि खजूरों के बागात थे जो अंसारियों के, वो बटे मुसलमान अंसार और महाजरीन के दरमियान। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके साथ ये जो भाईचारा करवाया, उसके बाद फिर अगला काम जो अल्लाह के नबी ने किया था ना, वो एक मुआहदा किया था, पैक्ट जिसको आप कहते हैं, अहदो पैमान, यानी लोगों को किसी रूल का पाबंद करना। क्योंकि वहाँ इतने तरह तरह के लोग जहाँ बस रहे थे, तो ख़तरा ये था कि कल आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। चुनाचे रिटर्न फॉर्म में हुआ, और ये इस बात की दलील है कि अल्लाह के नबी के दौर में भी लिखत पढ़त होती थी। आज वो लोग जो हदीस को छुटलाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हदीसें तो लिखी नहीं जाती थी, और पता नहीं कैसे और ज़ुबानी हाफ़ज़ों से हुआ। नहीं, उस वक्त भी लिखा होता था। तकरीबन 15 पॉइंट्स थे उसके, आप बुक में पढ़ सकते हैं बाद में चाहेंगे जब तो। लेकिन सबका खुलासा क्या था कि अल्लाह ताला ने सबको एक बात में रखा। आप ये सोच लें कि उस वक्त अल्लाह के नबी की हैसियत एक हुक्मरान की थी। आज के दौर में आप उसको प्रेसिडेंट कह लें, प्राइम मिनिस्टर कह लें, बादशाह कह लें, या कुछ और कह लें, और बाकी सब लोग अब आपके साथ काम करने वाले थे। यानी एक शख्स की इमामत या इमारत, और बाकी सारे जो थे मामूर थे। आपने उसमें यही बताया कि हर सब लोग बराबर हैं, और किसी पे जुल्म नहीं होगा, और जिम्मियों के साथ ये मामला होगा, यहूद अगर हमारे साथ मिल जाते हैं तो उनके भी हकूक बराबर होंगे, फिर मुसलमानों का खून एक दूसरे पे हराम होगा। यानी उस वक़्त तक जितना दीन आया था ना, उसको आपने लागू कर दिया। या फिर मेरा दिल चाह रहा है कि रुक के फिर हम चलें 60 साल पीछे। आपने मस्जिद नबी बनाई, भाईचारा कायम कराया, और अब तीसरा काम क्या किया कि उस वक़्त तक जितनी शरीयत ना आ चुकी थी, और बहुत थोड़े हुक्म थे उस वक़्त तक, सिर्फ तौहीद, रिसालत और आखिरा, ये तीन सब्जेक्ट्स पढ़े थे 13 साल में मुसलमानों में। कोई उस वक़्त तक अभी सियासी बातें नहीं आई थी, कोई इकोनॉमिक्स नहीं थी, सूद हराम नहीं हुआ था, नमाज नहीं आई थी, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं हुआ, अजान नहीं हुई। अब देखें हम किसी के दीन पे आते ही पहले क्या सोच रहे होते हैं। यानी आप देखिए कैसे दीन आता है लोगों के दिलों में। पहले लोगों को अल्लाह का यकीन दिलाओ, फिर उनको अपनी मौत का यकीन दिलाओ, फिर उनको रसूल की रिसालत का यकीन दिलाओ। ये काम हो जाए, नमाजें खुद ही ठीक हो जाएंगी, रोज़े रखने को खुद ही तड़पेंगे, फिर माल ले लेके फिरेंगे कि खुदा के लिए हमसे ले लो, ये कबूल करो, इसको लगाओ, कहीं हमारे लिए वबाल है, तुम इसको कहीं लगाओ। फिर ऐसे माशरे आते हैं, फिर लोग गुनाह करके भागते नहीं थे, वो गुनाह करके अल्लाह के नबी की अदालत में आते थे कि खुदा के लिए हमें हद लगा दो। आपने ऐसे तरीके बनाए, हमने किया? हमने जब अपना मुल्क बनाया तो इस्लाम का निज़ाम लगा? लफ्ज़ों की हद तक तो कई दफ़ा बात होगी, अमली कब हुआ? और क्या रुकावटें थी? आप सोचें, वो लीडर्स नहीं थे। एक अच्छा लीडर लाखों के मजमे पे भारी होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मज़मून पे बहुत कुछ कहा, और बहुत प्यारी रिवायतें आपको मिलती हैं कि आपने फरमाया कि इंसान जो है ना, हज़ार जैसे ऊँटों की मिसाल दी एक रिवायत में, अपने जहन से सुना रही हूँ याददाश्त से, कि इंसानों की इंसान जो है ना, ये ऊँटों की तरह है, हर 100 ऊँट में से कोई एक काम का होता है। यानी इंसान तो ढेर है, मजमे है, लेकिन हज़ारों इंसानों में कोई एक इंसान काम का होता है, और अल्लाह उसको फिर चुन लेता है। लेकिन जहाँ इंसान अच्छे नहीं रहते ना, तो वहाँ जगह मिलने के बाद भी खो जाती हैं। हमने अपना एक बाजू कटवा दिया चंद साल के बाद। वजह क्या थी? हमारे पास अच्छे लीडर्स नहीं थे, हमारे पास कोई प्लान नहीं था, पैटर्न नहीं। हमने नाम सुना हुआ था आज़ादी आज़ादी, हमने नाम सुना हुआ था हमें इस्लाम के नाम पे जगह चाहिए, और मेरा ख्याल है कि वो जगह लेने के बाद दुश्मन ज़्यादा खुश है। कि पहले जब साथ थे तो उसको कुछ देना पड़ता था, कुछ उनके हकूक देने पड़ते थे, अब दूर रह के हम उनके जहनों को पढ़ते हैं। वो सर पे बैठ के उस तरह हुक्मरानी नहीं करता था जो आज के दौर में जहनी गुलामी, आज तक जहनी गुलाम है, आज तक हमने उनके कल्चर को अपनाया हुआ है। नतीजा क्या हुआ कि हमने वो इस्लाम नहीं दिया। ये 15 पॉइंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत अदल और इंसाफ की बात थी। किसी जिम्मी पर कोई जुल्म नहीं होगा, ये कोई अकलियत और अक्सरियत की बात नहीं होगी, ये मुहाजिर है, ये अंसार हैं, ये यहाँ से आए, नथिंग, जो आए वो, और जिन्होंने बुलाया वो सब एक लेवल पे आ गए। और यही वो कानून थे जिसकी बुनियादों पे मदीना का एक ऐसा निज़ाम मुरतब हुआ कि जिसके बाद फिर कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता था। फिर अल्लाह के नबी ने लोगों की तालीम का सिलसिला शुरू किया, तस्किया किया, लोगों को इखलाक सिखाए। बद्दू थे ये, इनको तमीज़ भी नहीं थी बात करने की, ये खुद कहते हैं। हज़रत उमर के कौल पढ़िए, हज़रत अबू हुरैरा के पढ़िए। हज़रत अबू हुरैरा अपने आप को कहते थे, कभी कभी रो पड़ते, कहते कि अबू हुरैरा तू क्या था, कबीला दौस का गुलाम था, तेरी औकात क्या थी, लोगों के आगे आगे चलता, उनके जानवरों को पकड़ता, जहाँ उन्होंने पड़ाव करना होता तू ज़मीन ठीक करता, उनको बिठाता, जब वो उठ जाते चले जाते तो तू उनकी जगह को साफ करता, उनकी चीज़ें, यानी गुलाम की क्या औकात होती है। और आज दीन ने तुझे क्या बनाया कि लोग तुझे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं। हज़रत उमर अपने बारे में कहा करते थे, ए उमर तू क्या था, चरवाहा था, बकरियों को चराता था, और इस्लाम ने तुझे क्या मुकाम दिया। यानी सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई कौम होगी जिसको अल्लाह के नबी ने कैसे अखलाक सिखाए कि उनका इस्लाम भी खूबसूरत हो गया और उनका जाहिर और बातिन चमक गया। ये धोखा है कि हम कहते हैं हमारे पास लोग अनपढ़ हैं, लिटरेसी रेट नहीं है, हमारे पास मीन्स नहीं, हमारे पास स्कूल नहीं, हमारे पास सब कुछ है। देखिए, तीन चीज़ें चाहिए होती हैं सीखने और सिखाने के लिए। पहली चीज़ सिखाने वाला, ठीक है, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। दूसरी चीज़ सीखने वाले, और तीसरी चीज़ कोई किताब, कोई कलम, जो मीन्स है, यानी इल्म चाहिए, आलिम चाहिए और मुतालिम। बिल्डिंग नहीं है कहीं आपके पास, आप दरख्त के साए में बैठ जाइए, शुरू कर दें काम, अल्लाह उसी साए को आपके लिए जगह बना देगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से काम किया कि जिन चंद लोगों को पढ़ना लिखना आता था उनको चुना। और हकीकत है कि ये भी एक बहुत बड़ी एक आपकी हिकमत थी कि मक्का की निस्बत मदीना में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे और तिजारत यानी खेती बाड़ी करते थे। मक्का के लोग ज़रा सरदार टाइप के लोग थे। अल्लाह के नबी ने आने के बाद लोगों को उनके मेलानात यानी उनके ट्रेंड्स, उनके रुझान के मुताबिक काम दिए। जो जो काम कर सकता था आपने उसको वो कराया। और आपका उन दिनों में जो जोर था ना, पूरी जो बातें आपकी थी ना, वो यूनिटी की थी। चंद रिवायतें जो उस दौर में आपने सहाबा की तरबियत की, मसलन एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी कौन सा इस्लाम बेहतर है, कहा तुम खाना खिलाओ और जानने वाले और अनजान को सलाम करो। ये सलाम का रिवाज क्या है कि आपकी दीवारों को तोड़ते हैं ना, आप एक अपने आप को एक दूसरे के लेवल पे लेके आते हैं। अब अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदी आलिम थे, और आपको पता है कि एक आलिम का बदलना ज़्यादा मुश्किल होता है 1,000 जाहिलों से। वो लोग हैं ना जो दीन से दूर हैं, उनको कुछ पता ही नहीं बेचारों को, वो बेचारे अपनी ख्वाहिशों में फैल रहे थे, पता ही नहीं था दीन। आप ज़रा उनको दीन दिखाते हैं, वो जैसे दिया सलाई सुलग के शोले में आती है ना, ये बदल जाते हैं इनके दिल। आप एक आलिम को सर फोड़ते रहे वो नहीं मानेगा। यही हुआ इधर भी, आम लोग जो मक्का के थे ना वो मानते गए, यहूद जो साहिब इल्म थे और उस दौर के साहिब इल्म लोग थे यहूद, उनमें से गिनती के लोग माने, और उन्हीं में से एक अब्दुल्ला बिन सलाम थे। इनकी बात मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो कहते हैं कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने जब आपका चेहरा मुबारक देखा तो अच्छी तरह समझ गया ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। यानी आपके चेहरे पे एक चमक थी, कहा ये झूठा नहीं। और कहते हैं कि जो बात मैंने आपकी सुनी, जो सबसे पहले बात आपकी ज़ुबान से सुनी वो क्या थी कि ऐ लोगो सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, और रात में जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। ये बड़ी रिदमिक सी हदीस है कि अफशुस्सलाम अथिमुत्ताम, खाना खिलाओ और लोगों को यानी नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों। तो कहते हैं कि ये बात सुन के मेरे दिल में आया कि असल अमन का पैगंबर तो ये है, अमन तो ये देगा इंसानियत को। फिर आपने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसका हमसाया उसकी शरारतों और उसकी तबाहकारियों से महफूज और मामून ना हो। आज हम देखें, हम रात को वैक्यूम चलाएं तो हम कभी सोचते हैं कि नेबर में क्या होगा? हाँ, नॉन मुस्लिम नेबर हो तो फिर तो नहीं चलाएंगे क्योंकि पुलिस आ जाएगी, और बाहर 8 बजे के बाद हम गाड़ी का हॉर्न नहीं कर सकते। हम भी बंधे हुए लोग हैं। मैं कहती हूँ ऐसे ही कोई बांधने वाला हमें अपने मुल्कों में भी मिल जाए ना, हम भी ठीक हो जाए। हम जूँ ही अपने दारों में आते हैं तो हम सबसे गैर मुनज़्ज़म, यानी मस्जिदों के बाहर से पता चल जाता है कि ये जूते बाहर तक आए हुए हैं तो ये कितने लोग अंदर आए होंगे, लेकिन कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, यानी हमारी तरबियत नहीं हुई। मुझे तो अपने ऊपर तरस आता है कि उम्मत होने के नाते हमारी तरबियत नहीं हुई। एक भेड़ चाल चल रहे हैं और उसी में आज़ादी महसूस करते हैं। ट्रैफिक में फंसे हुए हैं तो भेड़ चाल चल रही है। और इस तरह अल्लाह के नबी ने लोगों के अखलाक सिखाए, लोगों से मिलना सिखाया। आपने कहा कि वो मुसलमान नहीं जो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी जितनी भी रिवायतें आप पढ़ते जाएंगे सबका खुलासा ये है कि आपने मुस्लिम ब्रदरहुड कायम किया। और कौमियत पे नहीं बांटा कि तुम सिंधी हो, तुम महाजर हो, तुम पंजाबी हो और तुम बलोची हो। नहीं, आपने लोगों को एक झंडे के नीचे खड़ा किया। देखिए ये जो कौमियत होती है ना, ये भी होता है, शायद आपको बात समझ बुरी लगे या सही समझ आए, हम जो एक ये नारा लगाते हैं ना कौमियत का, हम पाकिस्तानी हैं, ये सोमाली हैं, ये बंगालियों की मस्जिद है, ये अरबों की मस्जिद है, ये फलां की मस्जिद, ये इस्लाम नहीं है। बहुत तकलीफ दे बात है। हमने मस्जिदों के साथ नाम रखे हुए हैं ये फलां फलां कम्युनिटी के, और हर कम्युनिटी अपना डे ऑफ सेलिब्रेशन मनाती है। दूसरा वो इस्लाम, ये कौमियत का बुत जो है ना, ये शिर्क है। पढ़ के देखिए जरा आप इसको, जिसने कौम के नाम पे बुलाया ना लोगों को, उसने दीन की जड़ काट दी। आज यही देखें, हर बंदा अपने मजहब को, अपने कल्चर को प्रमोट कर रहा है, हर एक अपने तरीके को अपना रहा है, और नतीजा क्या आता है, दो मुसलमान है, एक पाकिस्तानी है तो वो सोमाली की मस्जिद में जाना अपनी हतक समझेगा, वो अफ्रीकी की मस्जिद में जाना तो बिल्कुल अलग समझेगा, और अगर उनका कोई हमारी मस्जिदों में आ जाए तो अल्लाह की बना। मैंने एक वाक्य सुना था जो मुझे याद आ गया, और अल्लाह के घर जब आप जाते हैं मस्जिद नबी या बैतुल्ला में, तो वहाँ आपको कितने कल्चर के लोग दिखते हैं ना। मस्जिद नबी में ख़ास तौर पे खाने का बहुत अहतमाम होता है, पूरे पूरे बड़े दस्तरखान लगते हैं और लोग यानी खाना खिलाते और बनाते हैं वट एवर। तो इसी तरह कह रहे हैं कि लोगों ने बड़े बड़े दस्तरखान बिछाए थे, और एक कोई अफ्रीकी ब्रदर था, आपको पता है कि नाइजेरियन था कोई, ब्लैक होते हैं, कह रहे हैं कि उसने भी बहुत सजाया अपना करके बैठा, और जब मतलब इफ्तारी का वक्त आया तो वो अपने दस्तरखान पे सिर्फ अकेला बैठा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे कि लोग दूसरों के पास थे, वल्लाहु आलम क्या वजह थी उसकी क्या, लेकिन यानी कि इतना बाज़ब हम फ़र्क करते हैं कि हम अरब हैं तो हम किसी ब्लैक के साथ नहीं खा सकते, हम ब्लैक हैं तो हम फुलां के साथ नहीं खा सकते। ये जब तक बुत नहीं टूटते ना, तब तक इस्लाम नहीं आएगा। आपको कौमियत का नारा ख़त्म करना पड़ेगा अगर आप इस्लाम चाहते हैं, वरना हर एक अपनी कौम होने पर खुश होगा। अल्लाह ताला ऐसी तमाम चीज़ों को पसंद नहीं करता जिससे किसी के इस्लाम पे हाथ आए। आपने यानी यही पैगाम दिया था कि किसी अरब को अजम पर और किसी गोरे को काले पे कोई नहीं है। ये अंदर से ये बुत टूटेंगे ना फिर इस्लाम आएगा, ये कोई ऑटोमेटिक आने वाली चीज़ नहीं है। आप अपने बच्चों को सिखाएं, कभी किसी ऐसे काले गोरे का फ़र्क ना रखें, अमीर गरीब का फ़र्क है। बाज़ दफ़ा तरबियत में ऐसे नुक्ते आ जाते हैं कि बच्चों में भी रौनत आती है, तो वो कैसे फिर अल्लाह के आगे झुकेंगे जो अल्लाह के बंदों के साथ नहीं झुकते। देखिए एक लफ्ज़ होता है इंडिविजुअलिज्म, अकेला जीना। मिसाल है कि अगर आप कोई एक चीज़ अलग करके प्रोमिनेंट करके रख दें वो सजती है, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपकी प्रोमिनेंसी नहीं होती। ये कंप्यूटर पे ना, एक डेस्कटॉप पे मेरे पास एक पता नहीं खुद ही सेव हुआ है क्या, थोड़ी देर इसको छोड़ देना तो वो पिक आने लगती हैं कुछ चीज़ें, उसमें एक आती है मेरे पास और वो क्या है, एक पूरी बास्केट है और उसमें ऑरेंजेस है ना, अब ऑरेंजेस की पूरी बकेट है, उसमें से एक ऑरेंज गिर के नीचे अलग गिरा हुआ है, और जो गिरा हुआ है वो बेचारा थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है इंडिविजुअलिज्म। मैं उसको बड़े शौक से देखती हूँ क्योंकि उसको हिलाएं तो वो फ़ौरन चला जाता है, कि जब एक पूरी बास्केट में आप होते हैं ना तो आप नहीं दिख रहे होते, लेकिन वो बास्केट बड़ी खूबसूरत दिखती है। किसी को सेल्फ प्रोजेक्शन का बड़ा शौक होता है, मैं नुमाया हूँ, मुझे देखो, मैं करूँ, वो वहाँ से कट के अलग एक छोटा सा अपना एक धड़ा बना लेता है। अब उस वाकई दिखेगा तो वो अकेला बैठा हुआ है वो दिखेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा। इस्लाम इंडिविजुअलिज्म का दीन नहीं है कि मुझे मानो, इसी से फिर दीन के अंदर वो हिस्से हुए कि हर एक कहता है मुझे लीडर बनाओ। आज उम्मते मुस्लिमा के इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट बहुत बड़ी क्या है, हर बंदा लीडर बनना चाहता है। आप जब सारी जमातों और ग्रोहों को जमा करके जम करके एक जगह करते हैं ना, तो उसका नतीजा क्या होगा, कितने लीडर्स फारिग हो जाएंगे ना, जो इसका लीडर था उसका लीडर था वो सारे निकल गए, ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हम कि मैं लीडर था मैं नीचे चला जाऊं, ये नहीं होगा। हाँ तुम मुझे मान लो, तुम सारे मेरे पास आ जाओ तो मान लेंगे, अच्छा तुम उसको मान लो तो ठीक है। ये जब तक लीडरशिप की कुर्बानियां नहीं दी जाएंगी ना मजहबी तबके से, तब तक दीन नहीं आएगा। खुद ही चेक करो कौन किस काबिल है, उसको बड़ा मान लो। और हाल क्या है कि हर बंदा लीडर बनने को तैयार है। क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, अबिलिटीज़ हैं कि नहीं, और ज़िम्मेदारी का एहसास है कि नहीं, लेकिन हम फिर भी बड़े हैं, मैं करता हूँ, यानी ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और ख़ास तौर पर मैंने दीनी तबके में पढ़ने पढ़ाने वालों में ये देखा है कि बाज़ दफ़ा चार लफ्ज़ आ जाते हैं तो हम कहते हैं मैं अकेला काम कर सकता हूँ, बस मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं किसी की पाबंदी बर्दाश्त कर सकता, ये चूँ चाँ चाँ मुझसे नहीं होती, मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना करोगे, ये दीन नहीं है। दीन क्या सिखाता है? आप कैपेबल हैं, आप एक मिसाल है कि सऊदीया यूनिवर्सिटी है, इस हर साल हज़ारों लोग वहाँ से निकलते हैं, एक प्रोडक्ट निकल रहा है ना, हर एक के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है ना कि जो एक अच्छे लीडर में हो, ताकि कल लोगों के सवालों के जवाब भी दे सके, और उसका किरत भी ठीक है, उसका फहम भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों भी बन सकते हैं, लेकिन उसी जामिया के बाहर चौकीदार के काम करने वाला, जो इल्म की महफिल में नहीं बैठा, वो कल के कि जिस तरह ये बन रहे एक मैं भी बन जाऊंगा, तो बात बदल जाएगी ना। दुनियावी तालीम के लिए हम जाते हैं, दुनियावी जॉब्स के लिए जाते हैं, हमारे पास हज़ारों सवाल होते हैं उनके कि ये है तो नहीं, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, और जहाँ दीन का मामला आता, कहते हैं नहीं, दाढ़ी रख ली तो हम दीनदार हैं, निकाब कर लिया तो बहुत ही नेक है। हमारे यहाँ आज दीन का यही तबका है। हाफिज़ साहब थे, मैंने उनसे मसला पूछा था। अच्छा जी, हाफिज़ साहब से मसला पूछा था? क्या पूछा था आपने? कोई जी फिकी मसला पूछा? क्या हाफिज़ साहब को मसले आने चाहिए? जिसने कुरान को अरबी में हिफ्ज़ किया, उससे आप तजवीद पूछें वो बताएगा, आप उसे रा का मखरज पूछें वो बताएगा, वो आप उसे दुआत का पूछ बताएगा, आप उसे जाके पूछ रहे हैं कि आप बताइए हाफिज़ साहब के तलाक हो जाती है कि नहीं? अब हाफिज़ साहब ने अपनी दाढ़ी की लाज तो रखनी है कि लोग क्या कहेंगे, इनको मसला नहीं आता, वो बेचारों ने जो उनको पता होता है पूरे इखलास से बताते हैं, कभी गलत होता है कभी ठीक होता है। और गलती उन हाफिज़ साहब की है? बिल्कुल नहीं, गलती हमारी है कि हमने एक हाफिज़ से दीन का मसला क्यों पूछा।